मैं इससे आगाज कर रहा हूं जी। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि हमारी जो कॉन्वर्सेशन हैं उसमें दो बुनियादी मकासद हैं हमारे। सबसे पहला मकसद ये है कि हमने लर्न करना है। ये देखिए जिस तरह मैंने अर्ज किया, वी आर ट्राइंग टू लर्न कि दूसरा किस तरह से देख रहा है जिंदगी को, ठीक है जी। एंड वंस वी लर्न दैट, नाउ वी आर इन अ मच बेटर पोजिशन टू हेल्प द अदर पर्सन। एंड सबसे पहले जिस तरह लर्न करेंगे तो इसका बहुत चांस है कि आपका अपना पर्सपेक्टिव चेंज हो, आप खुद एक ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग के थ्रू गुजरे उस प्रोसेस के थ्रू। लेकिन अगर लेट से आपको मालूम ये हुआ है कि नहीं, दूसरे की जो पर्सपेक्टिव है, दूसरे का जो पर्सपेक्टिव है वो इनकम्प्लीट है या वो ऐसी अजम्पशंस पे खड़ा है जो कि ठीक नहीं है, तो अब हमारे पास बेहतर चांसेस हैं कि हम उनको, वी कैन अप्रोच देम इन अ मोर पॉजिटिव वे। तो ये दो एस्पेक्ट्स हैं और हम इन दोनों ही को अलग अलग लेंगे। एक एस्पेक्ट ये है कि हमने अच्छी कॉन्वर्सेशन में दो चीजों का ख्याल रखना है। नंबर एक ये कि हमने खुद लर्न करना है और दूसरा ये कि हमने दूसरों की लर्निंग में कंट्रीब्यूट करना है। जो पहला एस्पेक्ट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। ये बात समझ लीजिए कि आपके पास अल्लाह ताला ने ये अपॉर्चुनिटी कि आप सीख सकें वो हर हाल में रखी हुई है, जबकि दूसरा जो एस्पेक्ट है कि मैं दूसरे की लर्निंग में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूं, वो सिर्फ तब हो सकता है कि अगर दूसरा भी चाहता हो। इफ द अदर पर्सन इज नॉट विलिंग टू लर्न फॉर इंस्टेंस, तो फिर हमारे लिए इसका इम्कान बहुत कम है कि हम उसकी वो आइस ब्रेक करके उसके पर्सपेक्टिव में एंटर हो सकें। अच्छा जी, हम वी विल टुडे वी विल बी टेकिंग अप द फर्स्ट पार्ट। हम कोशिश करेंगे कि इस पार्ट को कर लें कंप्लीट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। अगर नहीं हो सकेगा तो फिर इसको अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा ये वाला हिस्सा है जिसमें कि हम वी आर मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, उसको हम कहते हैं एनरिचिंग आवर ओन अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इवन इफ यू आर सर्टन, बिल्कुल सर्टेनिटी की जगह पे भी अगर आप खड़े हैं कि आपकी राय ठीक है, जो कि आम तौर पर नहीं खड़े होना चाहिए, सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट अबाउट आवर ओन, इस चीज के बारे में हर वक्त अपने आप को खुला लेकिन बहरहाल जिस तरह मैंने अभी मिसाल दी, दो इस मामले में अगर मामला ये बन चुका हुआ है सर्टन होता हूं तो अब मैं क्या लर्न करूंगा। अब मैं असल में जो चीज लर्न कर सकता हूं वो ये है कि दूसरा इस सिचुएशन को देख कैसे रहा है। मेरे लिए जो एक ऑब्वियस रियलिटी है, मेरे लिए जो एक ऑब्वियस फैक्ट है, मैं उसको क्यों समझ रहा हूं ऑब्वियस, और ये इतना ऑब्वियस है अगर तो ये दूसरा क्यों नहीं समझ रहा। जब आप ये देखते हैं तो असल में इट इज इन इटसेल्फ अ बिग लर्निंग, आपके अपने लिए बहुत बड़ी लर्निंग है कि दुनिया में लोग किस किस पहलुओं से चीजों को देखते हैं। यानी है तो वो इन्फिनिट एस्पेक्ट्स तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये कि बहरहाल वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड कि हमारे अलावा, हम जिस तरह से चीजों को देख रहे हैं उसके अलावा भी देखने का क्या क्या तरीका हो सकता है। इसमें मैं एक एक करके आपको वो गाइडलाइंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी, जो कि हम आमतौर पर लोगों से कहते हैं कि वो फॉलो भी करें और उसको फिर अपनी रिफ्लेक्शन का हिस्सा भी बनाएं। सबसे पहली चीज इसमें ये है कि जो मकसद है, द पर्पज ऑफ कॉन्वर्सेशन, इट शुड बी वेरी क्लियर इन योर ओन माइंड। द पर्पज ऑफ कॉन्वर्सेशन इज नॉट टू विन अ डिबेट। ये कोई डिबेट नहीं है जिसमें कि या मैं जीतूंगा या आप जीते, ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये कोई जहनी सलाहियतों का मुकाबला नहीं हो रहा है या बोलने की सलाहियतों का मुकाबला नहीं हो रहा है। यहां पर जो बात जेरे बहस है वो असल में एक दूसरे को समझने के हवाले से, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को समझने के हवाले से और एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग में कॉन्ट्रीब्यूट करने के हवाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर एक ये कि इसका जो पर्पज है वो ये होना चाहिए कि जिधर पॉसिबल हो कि हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करना है और दूसरा हमने दूसरों की अंडरस्टैंडिंग में कंट्रीब्यूट करना है वेर एवर इट इज पॉसिबल। एंड ऑन द अदर हैंड हमने अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझने में हमने अक्सर गलती की है जी, कि आपका इन्फ्लुएंस डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी रिलेशनशिप के स्ट्रेंथ के साथ। जिंदगी में आपकी आपके आसपास जो लोग रहते हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हों, वो आपके फ्रेंड्स हों, वो आपके कॉलीग्स हों, आपकी जिंदगी का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर उतना ही होगा जितना आपका रिलेशनशिप और आपका ट्रस्ट स्ट्रांग होगा। तो हमारी कॉन्वर्सेशन में, और ये किस तरह से बनता है, ये भी एक दायरा है, ह्यूमन इंटरेक्शन का एस्पेक्ट है, और ह्यूमन इंटरेक्शन का एक बुनियादी जो इनपुट है वो कॉन्वर्सेशन भी है। तो हमने व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज टू इम्प्रूव आवर कॉन्वर्सेशन सो दैट वी हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो, नंबर वन, हम दूसरों की अंडरस्टैंडिंग में कॉन्ट्रीब्यूट करें, नंबर टू, और जहां पॉसिबल हो हम अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करें। ये हमारा पहला पहली गाइडलाइन है। नंबर दो ये कि इतना अटेंटिवली सुनना है जितना आपके लिए पॉसिबल हो, एज अटेंटिवली एंड एम्पैथिकली एज पॉसिबल। ये दो वर्ड यहाँ पे यूज हुए हैं, या जाहिर है कि अटेंशन जो है वो तो आप जानते हैं, अटेंशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर इंटरेस्ट इन द टॉपिक, योर इंटरेस्ट इन द अदर पर्सन एज वेल, और एम्पथी का ताल्लुक दूसरे की फीलिंग्स को समझना है। एम्पथी का वर्ड जो है ये उधर इस्तेमाल होता है कि इसको इसको एक्सप्लेन किया जाता है इस तरह से कि हम दूसरे की जगह पर खड़े होकर कोशिश करें जिंदगी को देखने की। ट्राई टू पुट योर सेल्फ इन द अदर पर्सन शूज, ठीक है जी, वो कैसे देख रहा है, उसकी क्या बैकग्राउंड है, वो उसकी मीनिंग मेकिंग क्या है। अगर आपकी मीनिंग मेकिंग वो हो तो क्या आपकी कोई डिफरेंट राय होगी। ये है एम्पथी, और एम्पथी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स ऑफ द अदर पर्सन। इसको कहते हैं कि वी विल ट्राई टू लिसन फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रिप्लाइंग। इसको स्टीवन कवी ने जिस तरह से बयान किया है वो ये है कि मोस्ट पीपल लिसन फॉर द पर्पस ऑफ रिप्लाइंग, रिस्पॉन्स क्या देना है। आप बात कर रहे हैं तो मैं ये सोच रहा हूं कि मैंने इसका जवाब क्या देना है। आप बात कर रहे हैं और मैं ये सोच रहा हूं कि ये कितनी अच्छी है कितनी गलत बात है, बजाय इसके कि मैं आपकी बात को समझूं। आजकल के जमाने में एक और चीज जो बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट इतनी ज्यादा फैल गई है कि उसको हम ये कह सकते हैं कि एक वबा की तरह, वो ये है कि हम हर वक्त कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन हमने अपने हाथ में रखी हुई है। यानी वी आर ईदर इंटरेस्टेड इन अ टेलीफोन कॉल, कोई मैसेज आ रहा है, हम इसके लिए हर वक्त तैयार हैं कि जैसे ही मैसेज आए हम उसको फौरन देखें। ये इसको भी समझ लें कि दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। अगर आप एक कॉन्वर्सेशन में हैं, आप बात कर रहे हैं तो किसी से भी, तो उस चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो उस सूरत में जो आपका रवैया है वो उसकी तरफ अटेंशन का होना चाहिए। ऑब्वियसली मैं ये अर्ज करूँ आपसे कि यू विल नॉट लाइक इट, आपको बिल्कुल ये पसंद नहीं आएगा कि आप बात कर रहे हो और दूसरा आपकी तरफ मुतवज्जे ना हो। इसी तरह से जब दूसरा कोई बात कर रहा हो तो आपको भी उसी चीज को अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए और उसकी तरफ पूरी तवज्जो देनी चाहिए। सो लिसनिंग अटेंटिवली, दिस इज द सेकंड गाइडलाइन। तीसरी गाइडलाइन ये है कि अपनी फीलिंग्स के बारे में अवेयर होना। ये आम तौर पर हम वी मिस आउट ऑन दिस, हम अपनी फीलिंग्स को कई मरतबा बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और इसके बड़े बड़े बुरे नतीजे निकलते हैं। एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ कॉन्वर्सेशन अगर आप महसूस करें कि आप टेंस, एंग्शियस, इम्पेशेंस या डिफेंसिवनेस का शिकार हो रहे हैं तो इससे समझ लीजिए कि आपके अंदर जजमेंट पैदा हो रही है। जजमेंट इज अ वेरी बिग हिंड्रेंस इन लर्निंग, इसको बड़ा क्लियरली समझ लें। जजमेंट इस तरह होती है कि जिस वक्त आप, इसकी एक मिसाल समझ लीजिए कि somebody is talking to you about something जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और वो राय आपसे डिफरेंट है, तो अब जब वो बात कर रहे हैं तो आप असल में आगे जा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि ये बात किधर तक पहुंचेगी, इसके नतायज क्या निकलेंगे। जब आप इस तरह करते हैं तो आप बेसिकली इन द मोमेंट नहीं होते बल्कि उस मोमेंट से आगे जाकर उसके बारे में जजमेंट दे रहे होते हैं। जैसे ही आप ये करते हैं तो दैट इज व्हाट क्रिएट्स दीज फीलिंग्स। ये जो फीलिंग्स हैं, टेंशन की फीलिंग है, एंग्शियसनेस की, इम्पेशेंस की, डिफेंसिवनेस की, ये इस चीज का हिंट है कि आपका जो माइंडसेट है वो एक लर्नर से हटकर एक जजर की तरफ चला गया है। अब वो लर्निंग के में इंटरेस्टेड नहीं है, वो जजिंग में इंटरेस्टेड है. व्हेन वी से जजिंग कि ये ठीक है ये गलत है, इस तरह की चीजों के अंदर बढ़ गया, दिस इज गुड दिस इज बैड, बजाय इसके कि हम सिचुएशन को समझें जो इस वक्त हो रहा है उसके ऊपर तवज्जो दें, हम अपनी तवज्जो उस नतायज की तरफ ले जाते हैं कि जो निकलेंगे. और ये बहुत ज्यादा होता है पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दरमियान, बहुत ज्यादा होता है. यानी बच्चा जब बात कर रहा होता है तो आप बजाय इसके कि उस पर तवज्जो दें, आप उससे आगे चले जाते हैं कि अगर जो ये बात कर रहा है मैं इससे अग्री करूं तो इसके नतायज क्या निकलेंगे, और फिर मेरे लिए उसको कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाएगा. तो जैसे ही आप ये रियलाइज करेंगे, जो इमोशंस हैं हमारी, ये इसके बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा हिंट है कि हमारा जहन किस तरह काम कर रहा है. इट्स अ ह्यूज हिंट, इट्स अ ह्यूज इंडिकेटर कि आपका दिमाग किस तरह से काम कर रहा है, आप किस तरीके से चीजों को अप्रोच कर रहे हैं. जब आपको ये महसूस हो, जब आप ये समझ लें कि आपके अंदर ये फीलिंग्स आ रही हैं, तो अपने आप को रोक लें और अपने आप को रोक कर वापस लर्निंग के माइंडसेट में आए कि मैंने इसको समझना है, बजाय इसके कि इसके बारे में मैं जजमेंट्स पास करूं, लेट मी फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, मैं इसकी मीनिंग मेकिंग को समझता हूं. ब्रिंग योरसेल्फ बैक टू द लर्निंग माइंडसेट बिकॉज दैट इज द ओनली वे वी कैन एनरिच आवर अंडरस्टैंडिंग. जजमेंट से आपकी अंडरस्टैंडिंग एनरिच कभी नहीं होगी, ये बात हमेशा के लिए जान लीजिए. इन केस यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू ब्रिंग योरसेल्फ टू अ लर्निंग माइंडसेट, तो फिर कोशिश करें कि अभी जो गुफ्तगू हो रही है इसको पोस्टपोन कर दें, सस्पेंड कर दें, रोक लें, कुछ नहीं होगा. यू नो, इसकी भी आदत डालिए कि वी डोंट हैव टू फिनिश व्हाट वी स्टार्टेड राइट नाउ. हम ये हो सकता है कि कल इसको जारी रखें अगर आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया है, अगर दूसरे का दैट इज, या दूसरा जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कोई बात नहीं, कल शुरू कर देंगे, फिर से बात जारी रखेंगे. अगर आपके अंदर इमोशंस आ रही हैं और वो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि अब डिस्कशन अच्छी नहीं होंगी. दिस इज समथिंग विच वी मस्ट रिमेम्बर. इसके बाद जो चौथी बात है वो ये कि अज्यूम दैट इफ अ पर्सन होल्ड एन आइडिया इम्पॉर्टेंट, अगर किसी शख्स के नजदीक कोई आइडिया इम्पॉर्टेंट है तो फिर उसके पर्सपेक्टिव से देखने में वो इम्पॉर्टेंट ही है. हो सकता है कि आपकी नजर में कोई आइडिया इम्पॉर्टेंट ना हो, लेकिन अगर आप दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करें तो इसके नतीजे में आपको समझ में आएगा कि जो, मिसाल के तौर पर आपको मैंने कई दफा ये एज टीचर्स एज पेरेंट्स, आपको भी इसका तजुर्बा होगा कि आपने सुना होगा कि हम अपने छोटे बच्चों के हवाले से कई दफा ये बात कर देते हैं कि ये इतनी छोटी छोटी बातों में परेशान ना हुआ करो. ठीक है जी, यानी बच्चे के लिए परेशानी के मामलात वो नहीं है जो आपकी परेशानी के हैं. बच्चा इस बात से परेशान नहीं होगा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है, बच्चे ने तो इसी बात से परेशान होना है कि उसका खिलौना टूट गया. ठीक है ना जी, यानी आपकी नजर में हो सकता है वो इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसकी नजर से देखने की कोशिश कीजिए. एंड व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट द थिंग फ्रॉम द अदर पर्सन पर्सपेक्टिव, तो आपको ये बात समझ में आती है कि उसकी नजर में जो चीज इम्पोर्टेंट है उसके पर्सपेक्टिव से वो वाकई इम्पोर्टेंट होनी भी चाहिए. तो उस पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश करें विदाउट जजमेंट. यानी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट अ चाइल्ड कैन ओनली लुक एट द वर्ल्ड फ्रॉम अ चाइल्ड व्यू पॉइंट, वो आपके व्यू पॉइंट से नहीं देख सकता जिंदगी को, और इस चीज को अप्रिशिएट करने की कोशिश करें. पांचवी बात यह है कि ask and support asking questions that will clarify the other person's perspective, कि वो किस तरह से देख रहे हैं चीजों को, how are they looking at things, वो क्या चीज है कि जो अगर मेरी राय different है तो why is it that I am very sure कि मेरी राय ठीक है, तो वो क्या वजह है कि मेरी ये राय दूसरे तक communicate नहीं हो पा रही है. ठीक है ना जी, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि दूसरे की बात को समझने, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने, उसके पर्सपेक्टिव को समझने के हवाले से हमने क्वेश्चंस पूछने हैं. ये भी एक पूरी वी ट्राई टू गिव अ वेरी डिटेल्ड व्यू के व्हाट आर द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन. ये आगे आएगा इंशाल्लाह जब हम इंटरपर्सनल इम्प्रूवमेंट की तरफ आएंगे कि हम वो कौन से सवालात होते हैं, किस किस्म के सवालात होते हैं कि जो पूछकर इंसान को इंटरेस्टेड बना सकते हैं. लास्ट टाइम भी एक बात हुई थी ना जी, दैट रादर देन आस्किंग जनरल क्वेश्चन ऐसे कौन से सवालात हो सकते हैं जो पॉजिटिवली चीजों की तरफ माइल करें, उसकी तरफ बात करने के को प्रमोट करें। इससे अगली बात ये जी कि इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट एनी आइडिया आस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। हम आम तौर पर मैंने ये देखा है कि अगर आप कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो हमें इसकी बड़ी झिझक होती है कि हम इस पे बात नहीं करते, हम इससे पूछते नहीं, वी अवॉइड दैट। ठीक है जी, इसको कोशिश करनी है आपने कि अपनी अपनी जिंदगी से इस शर्म को खत्म करें। इवन इफ यू आर दी ओनली पर्सन इन द ग्रुप, इवन इफ यू आर दी ओनली पर्सन इन द ग्रुप कि जिसको बात समझ में ना आ रही हो, आप इसको अवॉइड करें कि अगर बात समझ में नहीं आई तो उसको इग्नोर कर दिया जाए। नेक्स्ट है जी नंबर 7 जो है इसका पॉइंट, वो ये है कि स्पेशली इफ यू डिसएग्री विद एन आइडिया, इस खास तौर पर इस तरह की बात है, ask and support asking questions that will uncover the other person's assumptions. ये जो पिछली दफा बात हुई थी बड़ी डिटेल में कि हम critically reflect करने की आदत डालें, मैंने जिन लोगों ने नहीं देखा जी वो kindly हमारा जो third session था उसको जरूर देख लें, critical reflection के बारे में, it's a very important topic। ठीक है जी, हम उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं अपने सेशन में और ये तकरीबन 8-10-12 सेशन चलते हैं, तो इसलिए अभी जो आपके पास चांस है उसको एक एक ओवरव्यू कम से कम ले लें उसका कि क्रिटिकल रिफ्लेक्शन होती क्या है। आप जिस वक्त ये बात करेंगे, अभी जो हम मैंने आपके साथ 6 पॉइंट शेयर किए हैं, ये 7वां पॉइंट है, अगर आप प्रैक्टिस चाहते हैं तो इन्हीं पॉइंट्स पर क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करें, इसका बहुत चांस है कि अगर आप इन पे क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करें और मेरे से उसको शेयर करें तो हो सकता है कुछ ऐसी अजम्पशंस हो मेरी जिनसे मैं खुद भी वाकिफ ना हूं। ठीक है ना जी, एंड यू माइट गेट अ चांस एंड आई माइट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट माई सेल्फ आपकी इस बात के नतीजे में। दूसरे की अजम्पशंस क्या है और उसके बिलीफ क्या है, इनको समझना, दिस कैन बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। ये जो है दूसरे को समझना, दूसरे की अजम्पशन को समझना, इट कैन बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। वी कैन ओनली डू दिस इफ वी आर लिसनिंग विद फुल अटेंशन एंड आर एक्टिवली एंड एम्पैथिकली रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट वी हियर। अगर हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अगर हम इसको वाकई सुन रहे हैं, तो फिर ही ये बात चलेगी, वरना ये बात समझ में आनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि दूसरा जो है वो किस तरह से देख रहा है चीजों को।
सर हमारे पास सवाल है, ये पहला सवाल है जी, आईफोन यूएस आईफोन के नाम से जो है वो अनम्यूट कर लें अपने आप को और अपना सवाल पूछ लें।
अस्सलाम वालेकुम मोहित साहब, आई हैव टू क्वेश्चंस। एक तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डू वी एंश्योर व्हेन यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन दैट both parties are able to talk. Very often in a conversation I find that one person keeps on speaking and the other person doesn't get a chance to speak. And second question is, how can we ensure that a conversation remains normal and decent and one doesn't get excited or angry, because then the whole impact of the conversation just goes. If you could give any guidance on these two things, please. Thank you.
जी बहुत शुक्रिया। We can only ensure these things from our perspective. I mean, we cannot ensure anything about the conversation where more than two people are involved, but we can ensure that from our part, these problems will not occur. हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं जी। हम दूसरे की तरफ नहीं कर सकते ये मामला, एक बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपकी तरफ से ये कंसिस्टेंटली मामला जो है इस तरह रहे, तो इसका चांस है कि दूसरा भी फिर बात उस तरह से देखने लग पड़े जिस तरह आप देख रहे हैं। यानी बजाय इसके कि कॉन्वर्सेशन को डिबेट बनाया जाए या हर वक्त विन लूज सिचुएशन में डाल दिया जाए, अगर आप कंसिस्टेंटली जो आपका रवैया है वो इस तरह रहे कि हमने बात को समझना है दूसरे की बात को, और अगर दूसरा नहीं सुन रहा तो उसको बस ये बता दें कि जी मेरा ख्याल है कि हम उस वक्त बात करेंगे व्हेन वी कैन अंडरस्टैंड ईच अदर, मुझे इसमें बात करने का मौका नहीं मिला है एंड मैं आपकी बात समझ गया हूँ आप ये फरमा रहे हैं। व्हेन यू विल एक्चुअली ट्राई टू गिव द अदर पर्सन द पॉइंट ऑफ व्यू दैट ही और शी इज प्रेजेंटिंग, और उसको आप ये बता देते हैं कि आपकी बात यही है, क्या ये मतलब है आपका, इस पर मेरे कुछ सवाल हैं। अगर दूसरा विलिंग ही नहीं है सवाल लेने के लिए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते इससे, देर इज नथिंग दैट यू कैन डू। तो इस चीज को ध्यान में रखिए हमेशा कि हम अपनी जिंदगी में जो इम्प्रूवमेंट है वो सिर्फ अपने ऊपर कर सकते हैं। वी कैन नॉट इम्प्रूव एनी वन एल्स, नो वन एल्स एट ऑल। जी तलकीन कर सकते हैं
सर, खैरियत से आप?
अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए।
जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरा सवाल ये कि आप कह रहे थे ना जैसे कि रिलेशंस जो है वो अच्छे होने चाहिए, तो मेरा सवाल ये कि अगर समवन इज नॉट गुड इन रिलेशंस एंड वांट्स टू इम्प्रूव अवर, मतलब वो एक मुस्लिह के तौर पे या रिफॉर्मर के तौर पे ही और शी वांट्स टू इम्प्रूव अवर माइंडसेट्स और ओपिनियंस और आइडियाज, विल ही और शी बी एबल टू ट्रांसफॉर्म अवर थिंकिंग्स और नॉट एट ऑल, अगर वो नहीं है रिलेशनशिप? अच्छा
देखिए,
अच्छा,
अगर तो अच्छा। अगर तो बात ये कि आप विदाउट रिलेशनशिप दूसरे के साथ इस्लाह का काम भी नहीं कर सकते, आप उसको किसी को भी इस्लाह पर इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, इसको ज़हन में रखिए। यानी मैंने जो बात कही है वो असल में ये है कि कॉन्वर्सेशन आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट इन अ रिलेशनशिप एज वेल। यानी कॉन्वर्सेशन में हमारा जो रोल होना चाहिए, हमारा जो मकसद होना चाहिए, वो सिर्फ अपनी डिबेट करके अपनी बात को सही साबित करना नहीं होना चाहिए, अपनी बात को समझना, दूसरे की बात, अपनी बात को बयान करना, दूसरे की बात को समझना जैसा कि दूसरा समझ रहा है उस तरह समझना, और फिर उसके बाद ये कि इस तरह बात करना कि रिलेशनशिप में दरार ना पड़े। यानी कॉन्वर्सेशन के हवाले से मेरी ये गुजारिश थी। आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूं, जो मैंने समझी है बात, कि हम अपने रिलेशनशिप्स के अपने अच्छे रिलेशनशिप्स के बगैर इस्लाह का भी कोई काम नहीं कर सकते। इस्लाह के काम के लिए जरूरी है कि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो। ये जो बात है ना जी कि हम जाकर तो कहीं पे दुनिया के किसी दूसरे कोने में जाकर तो कोई इस्लाह का काम कर दें, या जिससे पहली दफा मिल रहे हैं उससे इस्लाह का काम कर लें, ये दीज आर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स जिसमें कि इस्लाह को बिहेवियरल इस्लाह समझा जाता है। इस्लाह असल में सिर्फ बिहेवियर को आप अपने सामने मॉडिफाई करने का नाम नहीं है, इसमें थिंकिंग को, फीलिंग को, इंटेंशन को, मोटिव को, इनको असल में ट्रांसफॉर्म जब तक नहीं होंगे उस वक्त तक इस्लाह का काम अधूरा ही रहेगा। ये जो एस्पेक्ट है इसको समझना जरूरी है। आपकी बात से मुझे इत्तेफाक है जी।
अच्छा मुझे साहब, आपका बहुत अच्छा टॉपिक है कि जिसको मैं समराइज करूं तो ये है कि एक पर्पसफुल कम्युनिकेशन के लिए क्या कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारे रसूलुल्लाह ने भी जो सुनते हैं पढ़ते हैं कि वो भी जब कम्युनिकेट करते थे तो वो दूसरे बंदे की बात के दौरान इंटरप्शन नहीं करते थे बिल्कुल, बल्कि उसकी बात कंप्लीट हो जाती थी फिर उसे पूछते थे कि आपकी बात कंप्लीट हो गई, अब मैं जवाब दे दूं, तो फिर वो जवाब दे देते थे। तो हमें तो ये पढ़ाया गया है, तो ये क्या हो गया इन 1400 सालों में कि हम लोग जो हैं मुसलमान और खासतौर पे पाकिस्तानी जो हैं कंपेयर टू डेवलप्ड नेशंस, हम इस मामले में बहुत पीछे रह गए हैं। हम बहुत जजमेंटल भी हो जाते हैं और रिजिड भी हो जाते हैं, तो क्या वजूहत है इसकी, दो तीन कोई टॉप, जिसकी वजह से हम इस मामले में एक दूसरे को अकोमोडेट करना ही नहीं चाहते?
दैट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट एंड अ वेरी ट्रेजिक एस्पेक्ट जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई है। असल में आपकी ये बात बिल्कुल बजा है, बिल्कुल ठीक है कि हमको जिन आइडियल्स को हमारे सामने रखा गया है, जाहिर है कि उन जैसा कोई और हो ही नहीं सकता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिन आइडियल्स को हमारे सामने रखा है, उन जिन लोगों ने रखा है, असल में हमने उनसे ये देखा, चाहे वो कोई भी हो, जनरली कोई भी हो, ठीक है जी, उनको ये करते हुए देखा कि अगर से वो पढ़ा तो ये रहे थे, वो बता तो ये रहे थे कि इस तरह से हमें दूसरों की बात सुननी चाहिए, लेकिन उनका रवैया अपना जो था वो इसके बिल्कुल बरखिलाफ था। इसका एक नतीजा निकलता है जी, यानी इसका एक बड़ा बड़ा अनफॉर्चुनेट नतीजा निकलता है, वो ये कि हम भी ये सीखते हैं कि करने की बात ये है और अमल करने का ये है। यानी आपने अगर कहीं पे अच्छी कॉन्वर्सेशन की बात करनी है तो वो तो ये पॉइंट्स होने चाहिए जो मैंने आपके सामने मिसाल के तौर पे अर्ज किया या जो उस्वे हसना से आपको मिलते हैं। लेकिन जो जब कोई आदमी आपकी बात से इख्तलाफ करे तो ये सारे पॉइंट्स को साइड पे रखना चाहिए और फिर उसकी ऐसी की तैसी कर देनी चाहिए, क्योंकि दैट इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम दोज हु वर टीचिंग अस। ठीक है जी, दिस इज अनफॉर्चुनेट। मैं अपने एक सेशन में, ये सर्जरी से पहले की बात है जी, तो उसके बाद ये मौका नहीं बन सका अनफॉर्चुनेटली इस बात का जवाब देने का। एक बड़ा अच्छा सवाल आया था सामने, वो सवाल ये था कि हमारे सामने जो रोल मॉडल हैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के दूसरे पैगंबरों के रोल मॉडल हैं हमारे सामने, ये जो रोल मॉडल हैं क्या वजह हुई, और ये बेहतरीन मुस्लिहीन है, यानी अपनी अपनी सोसाइटी में उन्होंने जिस तरह से इस्लाह का काम किया है शायद किसी ने भी नहीं किया, लेकिन क्या वजह हुई कि हम उन इन 1400 बरसों में उस तरह का कोई मुस्लिह पैदा नहीं कर सके। मेरी इस मामले में जो राय है, नाकिस राय है, वो ये है कि असल में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाह के काम में उसवा हसना बना नहीं सकते। ये एक प्रॉब्लम है, यानी हम उस लेवल पर अपनी इस्लाह कर नहीं सकते जिस लेवल पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को एलिवेट किया हुआ था। अल्लाह ताला की डायरेक्ट हिदायत के नतीजे में, उनके अपने कॉन्शियसनेस के नतीजे में जिस जगह वो पहुंचे हुए थे उस जगह हम पहुंच नहीं सकते एज इंडिविजुअल। हमारे पास एक ही रास्ता है जी, और वो रास्ता ये है कि हम मिलकर, ना तो मैंने कभी परफेक्ट होना है और ना आप मुझे परफेक्शन के लेवल पर समझें, ये लाजिम है कि ना समझें, क्योंकि अगर समझेंगे तो आप भी मायूस होंगे, यू विल बी वेरी सैडली वेरी बैडली डिसअपॉइंटेड। ठीक है जी, आई विल ऑलवेज बी, अगर मैं सिंसियर हूं अपनी इंप्रूवमेंट के साथ, तो मैं आई विल ऑलवेज बी इन द जर्नी। अब एक ही रास्ता है हमारे पास, और वो ये है कि हम एक कम्युनिटी में, ऐसी कम्युनिटी जो एक दूसरे के साथ तावन करे, एक दूसरे की इस्लाह में मदद करे, वो काम कर सकें। दिस इज द ओनली वे फॉर अस, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है जी। हम अपने आप को लर्नर की जगह पर खड़े करें, चाहे आप एक पेरेंट हैं, आप एक टीचर हैं, आप यू विल नेवर बी अ परफेक्ट एग्जाम्पल, बट वॉट यू कैन डू, यू कैन बी अ वेरी गुड रोल मॉडल ऑफ अ गुड लर्नर। कि हम हर वक्त सीखना चाहते हैं, हर रोज अपनी गलतियों को समझ कर उनको ठीक करना चाहते हैं, और इस मामले में हम अपने स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं कि वो आगे बढ़ें और हमारी मदद करें कि हम ठीक हो सकें। ये जो एस्पेक्ट हैं इनको सामने रखते हुए मेरा ख्याल है कि अगर हम करेंगे तो उम्मीद है कि वी विल बी बेटर पीपल। मैं इस मामले में जो बींग द पेरेंट्स की जो वर्कशॉप होती है उसमें सबसे पहली बात यही होती है जी कि सबसे पहले अगर आप ये चाहते हैं कि अपने बच्चों की हम अच्छे बच्चे, अच्छे मुस्तकबिल के बच्चे पैदा करें, तो उसके लिए सबसे पहले आपको खुद अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी। यू कैन ओनली बी एज गुड पेरेंट्स एज यू आर गुड ह्यूमन बींग्स। आप जितने अच्छे इंसान हैं उससे ज्यादा अच्छे पेरेंट्स नहीं बन सकते। तो अपने आप को बहैसियत इंसान के अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें, सो दैट वी कैन बी बेटर बेटर पेरेंट्स, बेटर ब्रदर्स, बेटर बेटर हस्बैंड्स, बेटर यू नो बेटर फ्रेंड्स। हर चीज ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंसान तो अच्छे नहीं है, मैं मिसाल के तौर पर अच्छा इंसान तो नहीं हूं लेकिन अच्छा पेरेंट बन गया, दिस इज नॉट समथिंग दैट कैन, या अच्छा टीचर बन गया। तो वी शुड एक्नॉलेज कि हम गलती में हमसे होती है और हम अपनी इस्लाह के बारे में हसास हैं, सेंसिटिव हैं इंशाल्लाह।
जी, आप जी, बात का एक हिस्सा था कि पहले अच्छा इंसान बने तो शायद उसके बाद ही अच्छा कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। तो अपने सवाल को मैं थोड़ा सा नैरो डाउन करूं, अगर कि हम देखते हैं कि हमारा जो मजहबी तबका है, जो मजहबी लोग हैं, जो मौलवी लोग हैं, वो उतने ही ज्यादा स्टबर्न और रिजिड और अनविलिंग टू लर्न टू एनीवन, और जरा सी कोई डिफरेंस बात कर दे तो उस पर कुफर का फतवा लगना कोई मामूली सी बात है। तो ये हमारे मजहबी तबके में तो बहुत ज्यादा चीज आ गई, और अनफॉर्चुनेटली मजहबी तबका ही एक ऐसा होता है जिसपे कॉमन मैन, मतलब इलिटरेट मैन या कम पढ़े लिखे लोग उसकी तरफ देखते हैं। तो ये बहुत ही मसला हो गया हमारे यहाँ, जिसको एक हमारे स्कॉलर हैं अहमद जावेद साहब, जो इकबाल अकेडमी के साथ अटैच हैं, वो भी यही कहते हैं कि सबसे बदतमीज तबका जो है ना वो मजहबी तबका है। जी
बात सही है जी, यानी वो इस स्किल से शायद वाकिफ नहीं है, वो प्रॉब्लम क्या है इसको समझने, यानी मेरे ख्याल में एम्पैथिकली थोड़ा सा समझने की सिंपैथेटिकली कोशिश की जाए अगर, तो ऐसा लगता है ये कि जब मजहबी तबका जिस चीज को मजहब समझता है और वो समझता नहीं है, यानी एक चीज इंपॉर्टेंट समझ लें, मैं मेरी मजहब की इंटरप्रिटेशन है जो मेरे लिए मजहब है, ये बात आप वाजे हुई जी मैंने जो बात अर्ज की है, यानी वट एवर आई अंडरस्टैंड एज रिलीजन इज माई रिलीजन।
जी जी ये रिलीजियस थॉट जो है,
जी ये मेरी जो रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग है उसमें गलती हो सकती है, रिलीजन में गलती की बात नहीं कर रहा मैं, मेरी रिलीजन की अंडरस्टैंडिंग में गलती हो सकती है, और अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग में गलती है तो फिर मेरी रिलीजियस जो कंस्ट्रक्शन होगी वो गलत हो जाएगी। मजहब की जो आम तौर पर जो मजहब हमें सिखाया जाता है वो असल में ऐसा सिखाया नहीं जाता जी, ये इसको समझनी ये बात जरूरी है समझनी, इट्स अ स्लाइटली डिफिकल्ट टॉपिक, इसको समझना जरूरी है कि आप जिस चीज को मजहब दे रहे हैं, मजहब को एक तरह से इंजेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्यूज कर रहे हैं दूसरे में, समझा नहीं रहे, यानी दूसरे के लिए गौर व फिक्र का मौजू नहीं बना रहे उसको, बल्कि आप बता रहे हैं कि ये तो असल में 1400 साल से ये मजहब है और इससे तुम हट नहीं सकते, तो अब ये उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये उसकी ट्रेडिशन है, और अगर आप उससे इख्तलाफ करेंगे तो आप असल में उसके मजहब से इख्तलाफ कर रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग से नहीं इख्तलाफ कर रहे, क्योंकि ये उसकी अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। ये मैं तारिक साहब मैं ये बात वाजे कर पाया हूँ जी, प्लीज दिस इज इम्पोर्टेंट।
जी बिल्कुल नहीं, ये आपकी एक बात समझ आई कि शायद हम बहुत ओवर ट्रेडिशनलिस्ट हैं और हमारा मजहबी तबका भी जो ओवर ट्रेडिशनलिस्ट है तो वो फिर वो ट्रेडिशन जो है वो तो फिर पत्थर पे लकीर बन जाती है, तो वो जब तक उसी से हटेंगे नहीं।
इसके ऊपर अगर आप बात करेंगे ना उनसे, मिसाल के तौर पर अगर आप बात करें कि जी इस पर क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करना चाहिए, तो ये उनके लिए क्रिटिकल रिफ्लेक्शन का मौजू ही नहीं बन सकता जी।
जी
ये प्रॉब्लम है।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला हम सबकी मदद करें, थैंक यू वेरी मच।
आमीन 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 जी, सबकी मदद करवाए
जी।
सोबिया
नवीन,
अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी।
सर मेरा से क्वेश्चन है, पहले दो सेशन जो हुए थे उसमें मेरा क्वेश्चन रहता था कि जब हम करेक्टिव डेवलपमेंट को समझते हैं तो उसके लिए एक बहुत इरादा चाहिए, सिंसियर किस्म का इरादा चाहिए कि मैं अपने ऊपर काम करना चाहती हूँ, मैं खुद को चेंज करना चाहती हूँ। तो अब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो ये फैसला कर भी लेते हैं, हम भी बहुत सारी चीजों में चेंज करने के लिए अपने आप को फैसला कर लिए कि जी काम करना है, चेंज करना है, लेकिन एक दो चैलेंजेस आते हैं तो फिर हम बैक आउट कर जाते हैं। जहन यही कह रहा होता है कि मैंने बदल रही हूँ, मैं इरादा कर रही हूँ, लेकिन एक दो चैलेंजेस आते हैं और हम वहां से ही वापस हो जाते हैं, तो इस मसले का क्या हल होना चाहिए या हो सकता है?
इस मसले का हल ये होना चाहिए जी, यानी देखिए इंसान बड़ा मोहताज है सपोर्ट का, और अगर आप ये समझते हैं दैट लेट्स से मैं उसकी आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप ये समझते हैं कि मुझे अपनी अपनी एक्सरसाइज को रेगुलर करना चाहिए, ठीक है जी, तो ट्राई टू फॉर्म अ ग्रुप, दोस्तों का एक ग्रुप बना लें कि जो आपके साथ एक्सरसाइज पे रोज निकलना शुरू करें। एक दिन ऐसा होगा लाजमन हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, कि जिस दिन आप थोड़े से सुस्त पड़ रहे होंगे और वो आपको खींच लेंगे कि नहीं नहीं हमने जाना है, हमने फैसला किया, और कोई दिन ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें उनमें से कोई सुस्त पड़ जाए और आप उनको खींच लें। तो कम्युनिटी इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, अगर हम अपने आसपास ऐसे लोग जमा करने की कोशिश करें और ऐसे दोस्तों को के साथ ये शेयर करें कि हमने अपनी इस्लाह कर दी है, और अपनी इस्लाह के बगैर हम इस चीज की तवक्को ना करें कि हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो बेहतर होगा। एक चीज तो ये समझ लें कि दूसरों के ऊपर, चाहे वो आपकी औलाद हो या आपके स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, आप महज इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यू कैन नॉट करेक्ट देम, ये बात वाजे कर लीजिए अपने जेहन में, बड़ी अच्छी तरह से समझ लीजिए कि करेक्शन उसने खुद करनी है, और वो आपका जो इन्फ्लुएंस है और आपकी जिम्मेदारी है वो इन्फ्लुएंस ही की हद तक है, इससे ज्यादा है भी नहीं। सबसे पहली बात तो ये, अगर ऐसा ना होता तो कोई भी दूसरा, कोई भी पैगंबर ऐसा ना होता कि जिसकी औलाद जो है वो गर्क होती। हर पैगंबर जो है वो अपनी औलाद को उसकी इस्लाह कर देता। ये अल्लाह ताला की तौफीक है जी, और ये अल्लाह ताला ने अपने इल्म और अपनी हिकमत के मुताबिक देनी है। इसको एक तो ये बात को समझ लीजिए। लेकिन ये कि सपोर्ट सिस्टम आपका जो है, जो आपका सवाल है असल, वो ये कि हम एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करें। हम मोहताज हैं, हमें एहतियाज है सपोर्ट की, और दूसरों को भी है। इस चीज की रिकग्निशन जो है, अगर ये पैदा हो जाए तो फिर हम एक तो ये कि ह्यूमिलिटी की जगह पे खड़े होंगे। अब जो मेरा, मैं हमेशा जब ये टारगेट करता हूँ और कम्युनिटी की बात करता हूँ जी, तो उसमें आई नेवर से कि ये मैं कम्युनिटी बनाऊं और लोग जो है वो आके इस्लाह पजीर हो जाए। ठीक है जी, दिस इज समथिंग विच जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। अल्लाह ताला मुझे इससे हमेशा बचाए। जो चीज मैं एस्पायर करता हूँ वो ये कि ऐसी कम्युनिटी बने, हम लोग ऐसी कम्युनिटी बनाए कि जिसमें एक दूसरे की मदद करें इस्लाह करने के लिए। तो दैट इज द बेस्ट दैट वी कैन डू। जब तक वो कम्युनिटी नहीं है, तो इस चीज को ज़हन में रखिए कि देयर विल बी टाइम जब आपकी, जब हौसले टूटेंगे, देयर विल बी टाइम जब आपकी मोटिवेशन कम होगी। अगले दिन फिर से एक नए अज़्म के साथ खड़े होना है। हमसे गलतियां होंगी, उन गलतियों को हार तस्लीम मत कीजिए। डोंट कंसिडर देम टू बी फेलियर्स, दे आर मेयर स्लिप्स। आपने स्लिप होना है, आपने गिरना है, अपने कपड़े झाड़ कर फिर से खड़े हो जाइए, फिर से तैयार हो जाइए कि हमने मेहनत नहीं छोड़नी, क्योंकि ये प्रोसेस है। प्रॉब्लम क्या है, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, जो आपने सवाल किया उसमें एक और एस्पेक्ट भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम अपनी जिंदगियों में अगर महसूस करते हैं कि टारगेट नहीं अचीव हो रहा, यानी हमारे लिए प्रोसेस इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, हमारे लिए टारगेट्स, गोल्स इम्पोर्टेंट होते हैं, वो चीज जो हमें अपने गोल तक नहीं पहुंचा रही, पिछले 10 दिन 20 दिन 30 दिन 2 साल से हमें गोल तक नहीं पहुंचा रही, हम उसको छोड़ देते हैं, कोई नई चीज ट्राई करें। असल में जिंदगी प्रोसेस का नाम है, जिंदगी कोई गोल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने इधर पहुंचना है, आपका असल में प्रोसेस ठीक होना चाहिए। अब आप जिधर भी पहुंचे, ये जो सफर है जिंदगी का, इसको ठीक तरह से गुजारना असल में गोल है। किधर पहुंच पाएंगे, किधर नहीं पहुंच पाएंगे, क्या इन्फ्लुएंस कर सकेंगे, क्या नहीं कर सकेंगे, कितनी गलतियां ठीक कर लेंगे, ये असल में दिस इज समथिंग विच इज बियॉन्ड यू। कल मौका भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो मेरा इसमें कोई जोर चल ही नहीं सकता। तो कब मैंने मर जाने, देखिए वो ये वही बात है जिसको कुरान मजीद ने एक मौके पर ये कहा है कि तुम जब, अगर तुम निकल पड़ो अपनी जगह से, जब ये वो टाइम है कि जिस वक्त हिजरत को, मदीना हिजरत करने को तमाम मुसलमानों के लिए लाजिम कर दिया, और ये बताया कि अगर तुम निकल पड़ो और रास्ते में मौत वाकई हो जाए तो तुम्हें पूरा अजर मिल जाएगा, यानी तुम्हारा गोल अचीव हो गया। वो सफर है जिसके नतीजे में ये गोल अचीव होना है। इट इज नॉट, दुनिया में कोई टारगेट नहीं है कि मैंने किधर पहुंच पाना है या किधर नहीं पहुंच पाना। आपको अपनी इस्लाह करनी है, और इस इस्लाह के लिए, लेकिन क्या होता है कि जिस वक्त मैं निकला हूं, मैंने ये सोचा कि कल से मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, अच्छा आज फिर गुस्सा चढ़ गया, और कल फिर चढ़ गया, और फिर अगले दिन फिर चढ़ गया, और मैं फिर ये सोचता हूँ कि नहीं नहीं असल में प्रॉब्लम ये नहीं है कि गुस्सा कंट्रोल हो जाए, प्रॉब्लम ये है कि मैंने इस गुस्से को कंट्रोल करने की जिद्दोजहद नहीं छोड़नी, यही कामयाबी है। कामयाबी ये नहीं है कि मैंने अपना गोल अचीव कर लिया, कि अब मैं किसी बात पर गुस्सा नहीं करता, नहीं, दैट इज नॉट सक्सेस। सक्सेस ये है कि आपने जो मुश्किल थी उस चीज को अचीव करने में, उससे आपने हार नहीं मानी, यू कंटिन्यूड वर्किंग फॉर इट। जी सोफिया, मैंने आपकी बात का जवाब दे पाया हूं जी, प्लीज लेट मी नो।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, दोनों ही बिल्कुल सही बात है। और सर एक एक क्वेश्चन आज से मतलब भी है, और वो ये था कि जब हम कॉन्वर्सेशंस कर रहे होंगे तो ये बहुत ही मुश्किल है कि हम अपनी सबका एक्सपीरियंसेस से कट ऑफ होके अगले की बात को जज करें या समझें, यानी जजमेंट पैदा हो ही जाती है, और उसकी वजह ये होती है मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो इसको पास्ट एक्सपीरियंसेस को से तो काटे ही नहीं जा सकते जहन से, तो किस तरह फिर मेरे अंदर जजर मोड नहीं आएगा?
नहीं देखिए, ये अगर तो आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से आप इस जगह पे खड़े हैं, तो फिर मैं इसको एक दो दफा मैंने ये ट्राई किया, पीपल डोंट लाइक इट, लेकिन इसका मुझे बड़ा फायदा हुआ जी। यानी दैट अलाउड मी टू गिव देम अ चांस टू क्लैरिफाई देयर पोजीशन. मैंने ये कहा कि देखिए मेरा जो पहले जो तजर्बा है ना वो इस मामले में बहुत पॉजिटिव नहीं रहा है, मैं इस तरह से सोच रहा हूँ देख रहा हूँ, इसलिए लेट अस डिसकंटिन्यू फॉर द टाइम बीइंग, हम इसको दोबारा शुरू करते हैं. मुझे अभी पहले ये बात वाजे कर दीजिए कि मैं जो सोच रहा हूँ वो कैसे गलत है. ये आई डोंट नो इफ यू इफ यू वुड कंसिडर दिस टू बी अ वाइज थिंग टू डू, लेकिन आमतौर पर
मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि कम से कम चले बल्कि काफी इफेक्टिव है ये.
मेरा तजर्बा ये है जी कि अभी तक अच्छा रहा है. लेकिन ये ज़हन में रखिए कि ये अभी एक्सेप्शन आएंगे, ऐसे भी एक्सेप्शन आएंगी कि जिसमें ये अच्छा नहीं रहेगा. लेकिन क्या ये ठीक है, इसमें और मदद कीजिए और सोचिए, आप मुझे बताइए कि किस तरह से आपके ख्याल में व्हाट वर्क फॉर यू. दिस इज व्हाट आई मीन कि हम एक कम्युनिटी फॉर्म करें कि जिसमें एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो हम,
और इसी से 100% अपनी अंडरस्टैंडिंग एनरिच होने के बड़े चांसेस मिल जाएंगे.
एब्सोल्युटली राइट जी, एब्सोल्युटली राइट. क्योंकि एक चीज को समझ लीजिए कि जो भी आपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है, जो आपकी राय बन चुकी है लोगों के बारे में, रवैयों के बारे में, आरा के बारे में, ये जो कुछ बन चुकी है ये बेसिकली आपके पैटर्न्स बन चुके हैं. और जिस वक्त वो पैटर्न्स टूटते हैं तो जिसको मैंने कहा ना जी कि ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग उस वक्त हो रही होती है कि अच्छा ये असल में जो पैटर्न था ये तो गलत था, तो मुझे इसको फिर से मौका मिल गया कि मैं अपने आप को ठीक जगह पे खड़ा कर लूं, इससे बेहतर जगह पे, ठीक नहीं पिछली जगह से बेहतर जगह पे खड़ा कर लूं.
बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच.
ये मोस्ट वेलकम जी, थैंक यू.
आप पूछ लीजिए अपना सवाल.
जी सर, मुझे ये पूछना है आपसे कि अब कई दफा इस तरह होता है कि वी परफॉर्म रियली वेल इन कन्वर्सेशंस, और अगर कोई बंदा आपके सामने बड़ा नरम तबीयत का बैठा हुआ है और उसको कोई मसला भी है, फॉर एग्जाम्पल के इफ यू आर ए सीनियर इन योर इंस्टीट्यूट एंड सम रैंडम जूनियर कम्स टू यू एंड आस्क यू समथिंग, आप उसकी कोई प्रॉब्लम जो है वो दूर कर देते हैं, और इसी तरह आप रैंडमली भी कुछ लोग आपको मिलते हैं, आपका नरम रवैया जो है वो कुछ उनको अच्छा लग जाता है, तो उसके बाद यूं होना शुरू होता है कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे वो काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं. जब वो बढ़ जाती हैं तो उसके बाद उनकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी वो फिर आपकी प्रॉब्लम बन जाती है. तो ये दो चार लोगों तक तो ये चीज बेरेबल लगती है कि भाई इन दो चार लोगों की परेशानियां तो चलें हम डील कर ही लेंगे, लेकिन जब ये सर्कल बहुत बढ़ जाता है और आपको हर दूसरी जगह पे कोई ना कोई इस तरह का बंदा मिल रहा होता है जिसकी प्रॉब्लम्स ने आपकी प्रॉब्लम बनना है और आपको वो फ्रीक्वेंटली पूछते हैं ये चीजें, तो फिर हाउ टू डील विद इट, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इतने सारे मैसेजेस का रिप्लाई करना और इतनी कॉल्स को रिस्पॉन्ड करना, फिर सारी बातें सुनना, उनके जवाब देना. आप तो ये सब कुछ करते भी हैं तो आपका अपना एक्सपीरियंस काफी हेल्पफुल रहेगा. थैंक यू.
एक बात तो ये थी कि इसको टारगेट हमेशा कीजिए कि मैंने जो जो हेल्प की नौइयत है जो आपने लोगों तक को एक्सटेंड करनी है वो ऐसी हो कि उनकी हेल्प की जरूरत कम से कम होती चली जाए. यानी वी वुड लाइक पीपल टू स्टैंड ऑन देयर फीट, अल्टीमेटली तो ये टारगेट होना चाहिए. यानी यूं नहीं कि मैंने मेरे पास एक क्लाइंट आए हैं और अब मैं ये चाहूंगा कि ये बाकी सारी जिंदगी मेरे क्लाइंट रहें, बल्कि मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं उनको अब इंडिपेंडेंट कर दूं और वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने की कोशिश कर सकें. वो कैसे हो सकता है, यानी अगर तो मसला जो है वो इमोशनल है मिसाल के तौर पर, तो क्या हम उनको इमोशंस के बारे में बता सकते हैं कि वो कैसे जनरेट होते हैं, हाउ थिंग्स, वो कैसे दुनिया को कैसे देख रहे हैं, उनके पर्सपेक्टिव में क्या गलती है, वो उस चीज में क्या चीज है जो कि आपको जो एज अ टीचर एज अ हेल्पर ये डिटरमिन करने की जरूरत पेश आएगी कि ये क्या चीज है कि जो इस इन साहब को अगर मिल जाए तो इनकी हेल्प की जरूरत कम हो जाए. जो ये एस्पेक्ट है ना जी, इसमें असल टीचर वही होना चाहिए, यानी जो कि आपको अपने पैरों पर खड़ा कराने में मदद करे. बाकी रह गई ये बात कि जो आपकी इस वक्त लेट्स से मेनी पीपल रिफर टू यू फॉर हेल्प, तो अपने आप को अल्लाह ताला का एहसान मानिए कि अल्लाह ताला ने इस पोजीशन में रखा है, और अपने आप को जितना अवेलेबल कर सकते हैं रीजनेबली. जो गलती हो जाती है मैं वो आपसे अर्ज करता हूँ, व्हेन आई से एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इट हैज टू बी रीजनेबल, कि हम अपने as trying to be more helpful to others, hum kai martaba apne ghar ko aur apni zaat ko ignore kar dete hain. Aur wo jo baat hai ji ke mujhe sari duniya ko bacha lene ka koi fayda nahi hoga agar mere apni aulad mere apna main khud pakda gaya. Aur is mamle mein jo sabse important cheez hai usko yahi rakhna chahiye, form a community. That is the one solution ke jisme aap bajaye iske ki tanha ho, milkar hum ek dusre ke sath help ka kaam kare aur dusron ki madad karne ki koshish kare, so that we can share the burden of each other. Mere khayal mein community ka hona jo hai, it's a very very important thing. Aur unfortunately yahi cheez lack karti hai hamari zindagiyon mein, ye cheez lack karti hai bahut zyada, ki hamare paas wo community nahi hai ki jo asal mein ek dusre ki support ka kaam kar sake. I hope Shahzwan, maine aapki baat ka jawab de diya ho.
Thank you so much. Mujhe mil gaya.
Most welcome.
Bahut accurate.
Most welcome.
Thank you so much.
Thank you. Most welcome.
मैं एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही थी कि इज देयर एनी वे वी कैन लर्न दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस वेदर इट्स रिलीजन इकोनॉमिक्स, हाउ डू वी लर्न दैट वी मस्ट रिस्पेक्ट एवरीवन्स ओपिनियन एंड हाउ डू वी लर्न टू टेल ईच अदर कि व्हाट योर ओपिनियन व्हाट योर रिलीजियस थिंकिंग does not necessarily have to be imposed. I'm talking about group conversation, because what I have faced very often is if one person tries to impose himself, it really becomes very, very difficult for the other people not only to follow him or to understand him, it becomes very unpleasant because nobody is right in anything. But this is something that happens all the time. So I don't know what is the best way of, whether it's your own family member doing it or somebody else. Can we not just say, okay, this is your opinion, this is mine, let's respect each other and continue our dialogue.
Again, isme jo hai na ji, sabse important cheez jisko main samajhta hu wo ye ke aapko ye realization ho gayi. As a human being, as an individual, आपको ये realization हो गई कि जो भी आपकी राय है आपको दूसरों को impose नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में humble रहना चाहिए, उसके बारे में हमको दूसरों उसकी basis पर दूसरों को judgments उस दूसरों के बारे में judgments नहीं देनी चाहिए. ये आपकी राय है, मैं इससे इत्तफाक करता हूँ. मैं ये समझता हूँ कि इसको ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि किसी शख्स को इस जगह पे वो पहुंचा दे कि उसकी ये राय हो कि जो कुछ मैंने कहा है ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है. इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो जितने लोग मौजूद हैं सारे के सारे उस पे इत्तफाक करें. आपको अल्लाह ताला ने जहन दिया है, आप इन चीजों पर जो मैंने आपसे शेयर की इनके ऊपर गौर कीजिए. अगर किसी चीज में इख्तलाफ हो तो मुझे बताइए, दैट विल हेल्प मी इम्प्रूव. ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है. आई कैन नॉट से कि जब तक ये दुनिया में दूसरों की नहीं होगी तो दुनिया अच्छी जगह नहीं बनेगी. मैं जो चीज कह रहा हूं वो ये है कि जिस चीज को आप ठीक समझते हैं, पीपल आर नॉट गोइंग टू डू व्हाट यू थिंक इज राइट. पीपल आर गोइंग टू डू द वे दे थिंक दे शुड बिहेव. कभी उनसे हम यानी जो मेरे ख्याल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि हम जिस तरह चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ मामला करें, क्या हम उस तरह से कर रहे हैं? Would they like to be treated the way they treat others? If that is not the case, then they will be answerable. And unki khairkhahi ka taqaza ye hai, unki serious khairkhahi ka taqaza ye hai ki kisi tarah se unko ye yaad karaya jaye. Agar aap kara sakte hain, agar aapka ye influence hai, agar aap ye position hai, unko ye yaad karaiye ki aapko ek din Allah ke huzoor pesh hona hai, and you will have no answer for it because you yourself do not condone this behavior. जब ये बिहेवियर आपके साथ हो तो आपको अच्छा नहीं लगता. लेकिन एक चीज को बड़ी अच्छी तरह समझ लें कि ये आपकी आरा है, ये आपकी डिसेंसी, आपकी पोलाइटनेस, आपके रूल्स ऑफ कॉन्वर्सेशन हैं कि जिनको आप ठीक समझते हैं. लेट्स से मेरे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं, मेरे तरीके हैं, मैं ये समझता हूँ कि इनको मैं यहाँ पर दूसरों के साथ शेयर कर रहा हूँ. जो लोग इससे इत्तफाक करते हैं हम उनके उस पर हमें खड़े होना चाहिए. लेकिन एक आदमी जो नहीं इत्तफाक करता या जिसकी ये राय नहीं है, तो मैं उसके बारे में ये राय तो रख सकता हूँ कि इनसे इनसे गुफ्तगू करना गलत है, इनसे गुफ्तगू करना मुश्किल है, लेकिन व्हाट आई कांट डू रियली इज के आई कैन नॉट ब्रिंग दैट पर्सन टू माय वे ऑफ थिंकिंग एंड माय वे ऑफ अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम, दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. यानी आई एग्री आपकी बात से, मैं इस हद तक एग्री कर रहा हूँ कि इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डील विद सच पीपल, वेरी वेरी डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, समटाइम्स इवन यू नो डिस्करेजिंगली डिफिकल्ट. बट द थिंग इज दैट दिस इज वॉट आवर ट्रायल इज, यही तो आजमाइश है. हमें इस दुनिया में जिस डाइवर्सिटी का मुकाबला करना है, जिस डाइवर्सिटी को फेस करना है और जिस डाइवर्सिटी को वैल्यू करना है. देखिए, अगर अगर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन नहीं होंगे तो डेवलपमेंट भी नहीं होगी. सबसे पहले तो ये समझ लें किसी की डिफरेंस को उसमें से आप क्या ले सकते हैं, वॉट इज इट दैट यू गेट आउट ऑफ इट ऑफ वैल्यू फॉर योर सेल्फ, वो लेते जाइए और इंशाल्लाह अपने आप को इम्प्रूव करते जाइए. इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकेंगे.
बस इंसान को सबर से बस कहना चाहिए, जस्ट लीव इट. आई गेस दैट इज द ओनली वे यू कैन डील विद इट.
इफ देयर इज नथिंग एल्स दैट यू कैन डू, यस,
विदाउट गेटिंग योरसेल्फ एंग्शियस एंड एंटागोनाइज और अपसेट, इट डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम.
हाँ जी, आई वुड डेफिनेटली एग्री विद दैट. लेकिन इसी चक्कर में एक गलती हो जाती है हमसे, वो ना करी कर होने दें, और वो ये कि समटाइम्स बिकॉज समबडी इज नॉट बिहेविंग अप्रोप्रिएटली, हमारा भी उसके बारे में, हमारा भी दिल उससे दूर हो जाता है, और जो वो अच्छी बात भी कर रहा है हम कई दफा उसको नहीं मानते. ये अपने साथ ना होने दें. जो वो अच्छी बात कर रहा है उसको सुन लें, अगर आपको लगता है कि ठीक बात है उसको मान भी लें, और वो नहीं सुनना चाहता वो उसका और खुदा का मामला है, आप सुनना चाहते हैं ये आपका और खुदा का मामला है.
जी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव सेड कि अच्छी बात जो कर रहे हैं तो वो मान लेनी चाहिए. बिल्कुल सही कह रहे हैं.
बिल्कुल जी,
बहुत बहुत शुक्रिया.
बहुत थैंक यू. मोस्ट वेलकम जी.
हम अपना हमारा जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो हो सकता है कि उसको स्टार्ट हुए हुए साल हो गया हो, दो साल हो गए हों, लेकिन उसकी जो आउटकम है वो बाहर वाले लोगों को नजर नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से सुनने को ये मतलब ये सुनना पड़ता है कि आप जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो नजर तो नहीं आ रही. तो कैसे किसी दूसरे को बंदा बताए कि जो हमने हासिल किया है, ये जो हम सीख रहे हैं वो कहाँ. और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो बीज बस अभी मिट्टी के अंदर ही होता है, वहीं पे बस वो बेचारा अभी अंदर ही कहीं जो है ना वो धक्के खा रहा होता है, उसकी आउटकम बाहर वाले लोगों को उस तरह से नजर नहीं आ रही होती. तो हम बाहर वाले लोगों को कैसे बता सकते हैं कि जो हम सीख रहे हैं वो कहाँ है और वो कब नजर आएगा या कैसे नजर आएगा.
एक बात तो ये जी कि ये जो टारगेट है ना जी, इसको रिव्यू करें कि दूसरों को क्या नजर आएगा और कैसे नजर आएगा. इसने अपने टाइम पर निकलना है. आप इस तरह से समझ लीजिए, मैं इस वक्त अपने नवासे के पास हूं जो कि पिछले अब अगले महीने वो इंशाल्लाह 2 बरस का हो जाएगा. अभी तक वो कितनी अजीब बात है कि अभी तक वो पूरा जुमला ठीक तरह से नहीं बोल सकता, उसके आसपास सारे लोग जो हैं बोल रहे हैं. इट्स बीन 2 ईयर्स, ठीक है जी, 2 साल हो गए बोलता नहीं. तो लेकिन दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस. यानी हम उसकी आबियारी करते रहें, उसको अच्छा माहौल देते रहें, ये हो नहीं सकता कि वो ना बोले, ठीक है जी. अल्लाह ताला सबको नॉर्मल रखे. अगर वो एक नॉर्मल बच्चा है और वो उसके अंदर वो सारे पोटेंशियल हैं जो एक नॉर्मल बच्चे में होते हैं, तो वो इंशाल्लाह वो नमूदार होने लग पड़ेंगे. असल में जो नेचुरल लर्निंग प्रोसेस है वो यही है. इट इज एन इवॉल्विंग प्रोसेस, एक प्रोग्रेशन के साथ हम सीखते चले जाते हैं, और अगर हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर वो दिखने भी लग पड़ेगा. आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए. ये है जो गलती हो जाती है कई दफा, और उसमें शॉर्टकट्स होने शुरू हो जाती हैं. और वो जो जब आप महसूस करते हैं कि अंदर आपकी कुछ और चल रहा है और आप दिखाना चाहते हैं, तो उसके नतीजे में कई दफा डुप्लिसिटी भी पैदा होती है जी, विच इज अ डेंजरस थिंग. ये डुप्लिसिटी वही चीज है जो एक दूसरे पहलू से जिसको आप कह सकते हैं हिपोक्रेसी, ठीक है जी. हम अंदर से वो नहीं है लेकिन शो करना चाहते हैं. जब भी हम ये चाहेंगे कि दूसरों को दिखे कोई चीज, तो हमारे अंदर ये कमजोरी है कि हम ये कर सकते हैं. तो ना दिखे, आने दें, लेकिन आपको क्या अंदर भी महसूस नहीं हो रहा. यानी अगर अंदर भी महसूस नहीं हो रहा तो फिर that needs to be reviewed. फिर ये देखना पड़ेगा कि क्या चीजें ठीक होनी चाहिए, हमें किस तरह से अप्रोच करना चाहिए. और हम ये जो बात आपने फरमाई है, यानी यूं समझ लें कि जब पैमाना भर जाएगा ना तो वो छलक भी जाएगा, वो नजर भी आ जाएगा. अभी भरने दें, ये बच्चा जो है ये इसने अगर दो साल में ये पूरा जुमला नहीं बोल सकता तो अनदर सिक्स मंथ्स, अनदर ईयर, अनदर टू ईयर्स बोल जाएगा. लेकिन अगर इसको आप ये जो प्रोसेस है नेचुरल लर्निंग का प्रोसेस, इससे रोक दें. आप ये कहें कि नहीं, इसका मतलब है कि ये एनवायरनमेंट ना दी जाए कि जिसमें लोग बात कर रहे हैं, लोग चुप करके बैठे, तो इसके नतीजे में वो उसका बोलना और डिले हो जाएगा. तो दिस इज द नेचुरल प्रोग्रेशन. आप पहले बात को समझ लें, उसके बाद उस पर उसकी प्रैक्टिस शुरू करें. जब प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो दिखेगी भी, वो रोकी नहीं जा सकती. बट दिखने को टारगेट ना करें. ये जी आमना, मेरी बात वाजे हुई जी मैं जो अर्ज कर रहा हूँ?
जी सर, मैं अगर अपने लिहाज से देखूं तो मैं इस बात को कहूंगी कि हाँ ठीक है, वाजिया हो गई. लेकिन असल में जब जिन लोगों में हम घिरे हुए होते हैं, उसमें एक जो हमारा पहले वाला जो तरीका तदरीस या तालीम होता था, उसमें यही होता था कि किसी को कुरान पढ़ने या किसी मदरसे में या कहीं डाल दिया जाता है तो एकदम से जाहिरी तौर पर उसमें बहुत सारी तब्दीलियां आ जाती थी. किसी ने नकाब शुरू कर दिया, उसने बहुत सारी चीजें तर्क कर दी, तो वो लोगों को एक लगता था कि जी हाँ तब्दीली आ रही है. लेकिन इस तरीके में ये होता है कि वो सिर्फ इंसान को खुद को पता होता है कि मैं कहाँ कहाँ बदलाऊँ या कहाँ मेरी नीयत में फर्क आया या कहाँ मेरी सोच में फर्क आया. तो बस मुझे सिर्फ यही होता था कि किसी दूसरे को कैसे बताया जाए. तो आपने सही कहा कि बाकी टाइम लगेगा, बाकी जब हम दूसरों पे
आ जाएगा जी. When people will, you know, जो लोग आपके साथ मामला कर रहे हैं वो आपके अच्छे तरीके से मामला करने को, ऐसा हो नहीं सकता कि वो नोट ना करें. यानी आपकी आपके अंदर अगर बर्दाश्त ज्यादा हुई है तो ये हो नहीं सकता कि नोटिसेबल ना हो. ये पॉसिबल है कि कुछ टाइम लग जाए. मुझे शायद अभी तक टाइम लग रहा है ये बताने में कि मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी इम्प्रूवमेंट में. अपने घर वालों को, जो मेरे बिल्कुल इमीडिएट फैमिली है, उसको अभी भी बताने में मुझे कोशिश करनी पड़ती है कि नहीं, मैं अपने बारे में सीरियसली इम्प्रूवमेंट की कोशिश कर रहा
हूँ. सर आपको so भी, हम तो अभी थे, बिल्कुल नहीं है.
नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है. हो सकता है कि आपको इतना नेगेटिव बैलेंस के साथ शुरू ना करना पड़ा हो जितना मैं मुझे शुरू करना पड़ा हो.
सही है सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू.
मोस्ट वेलकम जी.
जी अस्सलाम वालेकुम सर.
वालेकुम अस्सलाम, खैर खैरियत हैं
जी सर? अल्लाह का शुक्र सर. अभी जो आपने बयान किया है, जो शुरू में 7 पॉइंट्स जो थे सर, उसमें आपने कहा कि जब कॉन्वर्सेशन किसी के साथ स्टार्ट हो और फिर आप इम्पेशेंट होने लगे और एंग्जाइटी होने लगे तो इट मींस कि आप जजमेंटल मोड में जा रहे हैं. तो सर उसमें ये है कि मतलब ये हैबिट्स हमारी बचपन से जैसे समझ लें डेवलप हुई हुई है और ये काफी स्ट्रॉन्ग हैबिट्स हैं, यानी हम इस तरह से चले जाते हैं उस मोड के अंदर. तो सर उसको, उस हैबिट को ब्रेक करने के लिए, अनलर्न करने के लिए जो है, उसके होते ना कि आपने किसी हैबिट को ब्रेक करना तो बेबी स्टेप्स आपको लेने पड़ते हैं, तो वो क्या स्टेप्स होंगे जो हम इसको अनलर्न करने के लिए लेंगे?
मैं इंशाल्लाह जी ये जब हम ये खत्म करेंगे ना जी ये वाला टॉपिक, तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. दिस जो आपने सवाल किया वो मैं एक रिफ्लेक्टिव जर्नल की बात करता होता हूँ. रिफ्लेक्टिव जर्नल, ठीक है जी, दैट हमने जो कुछ किया है, एक तो वो था ना जो हमने पहली सेशन में, नहीं सेकंड सेशन में किया था, लर्निंग जर्नल, ठीक है जी. वो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसको आप इग्नोर ना कीजिए. ये जो आज हमने 7 पॉइंट्स किए हैं, इनके बारे में अपनी लर्निंग जर्नल करके देखिए. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, क्या चीजें आपने नोटिस की हैं इसमें के विच चेंज योर पर्सपेक्टिव, या क्या फील कर रहे हैं उस पर्सपेक्टिव के चेंज होने से. वो जब आप नोट करेंगे तो दैट इज इंटरनलाइजेशन, आपकी जो लर्निंग है, जो कॉन्सेप्ट आपको मिले हैं उसकी इंटरनलाइजेशन होगी. इसी तरीके पर जब हम गलतियां करेंगे और उन गलतियों को नोट करेंगे, उन गलतियों को इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है जी, और जब ठीक करेंगे उसको नोट करना शुरू करेंगे. यानी कम अज कम उसमें ये नहीं कि आपने सारी जिंदगी को अपना रिकॉर्ड करना शुरू कर देना है. कोई एक पॉइंट लें अपनी जिंदगी में, आपने दिन गुजारा है उसके, एट द एंड ऑफ द डे आपने अगर उसके बारे में रिफ्लेक्शन की है कि यहां पर मेरे से कुछ चूक हो गई, और उसके बारे में लिखना शुरू कर दें कि क्या हुआ था, व्हाट वाज इन माय माइंड, व्हाट डिड आई, व्हाट वाज आई थिंकिंग, व्हाई डिड आई इग्नोर इट, ये मैं इसको ठीक समझता हूँ। मिसाल के तौर पर ये 7 पॉइंट्स ही हैं, आपने इनको फॉलो करने की कोशिश की है, इनमें से जो ठीक समझते हैं आप उनको फॉलो करने की कोशिश की है और उसमें से भी चूक हो गई है, तो इसको नोट करना शुरू कर दें एक खास तरीके पर और फिर देखिए कि क्या, डज इट हेल्प, इट विल डेफिनेटली हेल्प बिकॉज इट विल मेक यू मोर कॉन्शियस। अल्टीमेटली होता क्या है, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, हमारे पास 2-3 मेथड्स हैं जी ये करने के, एक मेथड है रिफ्लेक्टिव जर्नल का, एक मेथड है मेडिटेशन का, एक मेथड यू नो बीइंग मोर कॉन्शियस ऑफ इट, आपस में गुफ्तगुओं का ये मौजू बना लें, आपस में बातचीत का। लेकिन जो कुछ भी ये कर रहे हैं आप, उसमें बेसिकली वॉट यू आर डूइंग इज मेकिंग योर सेल्फ मोर कॉन्शियस ऑफ वॉट, मोर इंटेंशनल ऑफ वॉट यू डू। ठीक है जी, हम जब कुछ करें तो रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पर, रिएक्शन के तौर पर ना हो जाए, बल्कि हमारा सोचा समझा रिस्पॉन्स हो वो। जब आप सोचा समझा रिस्पॉन्स देंगे, या यूं समझ लीजिए कि उसमें एक और एस्पेक्ट जो मैं बड़ा फैन हूं इस एस्पेक्ट को ऐड करने का, वो ये है कि अपनी जिंदगी को खुदा के साथ एक इंटरेक्शन समझें, यानी इट इज आई एम नॉट इंटरेक्टिंग विद यू, आई एम इंटरेक्टिंग विद गॉड। ठीक है जी, व्हेन आई से दिस तो मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि आप जो मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, मेरे घर वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे अहबाब हैं, ये जितने भी लोग हैं, इनके जरिए से अल्लाह ताला मेरी जिंदगी में मामलात पेश आ रहे हैं। ठीक है जी, मेरी जिंदगी में जो मामलात पेश आ रहे हैं, कभी खुशी के कभी गमी के, ये जो सब कुछ हो रहा है, इसमें ये मेरे हाथ में नहीं है कि क्या पेश आना है, ये अल्लाह ताला की इजाजत से, अल्लाह ताला की मर्जी से मेरी जिंदगी में आते हैं, और मेरी जो एलिवेशन है वो इनके जरिए से नहीं होनी, ये अपॉर्चुनिटीज हैं एलिवेशन के, लेकिन अपने रिस्पांस के जरिए से होनी है। मैंने क्या रिस्पांस देना है कि जिसके नतीजे में मैं अल्लाह ताला के करीब तर होता चला जाऊं। ये 2-3 चीजें जो हैं, इनको अगर आप सामने रख लें तो इंशाल्लाह अगेन इट इज गोइंग टू बी अ प्रोग्रेसिव थिंग, इट इज गोइंग टू बी सिक्वेंशियल। वो जो एक कोम्पल निकालता है परवरदिगार और फिर उसको हरा भरा दरख्त बना देता है, ये एक दिन में नहीं करता जी, इसमें बरसों लग जाते हैं। तो इस कोशिश में अपने आप को भी, इस कोम्पल को जो अच्छाई की अंदर पैदा हो रही है, इसको, इसकी आबियारी करें, इसको बेहतर से बेहतर बनाएं, और इसके बाद इसको हरा भरा दरख्त बनते हुए देखने की आरजू में कोशिश जारी रखें, बन जाएगा इंशाल्लाह। और अगर नहीं भी बनेगा तो मैंने जिस तरह अर्ज किया, दिस जर्नी इज द डेस्टिनी इटसेल्फ। जी डॉक्टर साहब, मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया जी, प्लीज मैं ये, आई एम वेरी, आई फील दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं हर दफा ये पूछ लिया करूं, ताकि अगर कोई फॉलो अप क्वेश्चन आप करना चाहें तो प्लीज फील वेलकम्ड।
नीचे थैंक यू सो मच सर, समझ आ गया।
जी मोस्ट वेलकम जी, यू मोस्ट वेलकम।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी।
सर मेरे जहन में सवाल है, वो आमना के सवाल से मिलता जुलता ही है
जी। जी,
हमारे जो मतलब इर्द गिर्द के लोग हैं, वो देख रहे होते हैं कि हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और हम बदल नहीं रहे, तो उनकी तरफ से जो डिस्करेजमेंट मिलती है कि कोई फायदा नहीं, तुम जो कुछ कर रही हो उसका कोई फायदा नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, इस तरह की जो बातें हैं, इनको कैसे वो किया जाए?
जो है ना जी, इसमें मैं आगे चल के आपको इंशाल्लाह एक हमारा पूरा परमानेंट मुस्तकिल टॉपिक है कि इस पूरी एक्सरसाइज में मोटिव क्या होना चाहिए। ठीक है जी, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका, आपने बात फरमाई है, ये अगर हमारा मोटिव वीक होगा तो असल में ये चीजें हमें बहुत ज्यादा डिस्करेज करेंगी। लेकिन जिस तरह मैंने अभी अर्ज किया कि अगर इफ इट इज अ मैटर ऑफ माई ट्रांजेक्टिंग विद गॉड, ये मेरा और खुदा का इंटरेक्शन है जिसमें अल्लाह ताला कॉन्टिन्यूसली मेरी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है इम्प्रूवमेंट की, कभी आसानी के जरिए से, कभी मुश्किल के जरिए से, जब मैं इस चीज के बारे में कॉन्शियस होता जाऊं, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर रहेगा, कि जिसमें असल में दूसरों की इंकरेजमेंट और डिस्करेजिंग जो कमेंट्स हैं, मैं उसको फेस करने का हौसला अपने अंदर पैदा करता चला जाऊंगा। लेकिन अगेन आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई वन थिंग, कि ये चीज इंशाल्लाह एज टाइम प्रोग्रेसेस इट विल बिकम ऑब्वियस, और चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। आपको सबसे पहली चीज जो नोट करनी है वो ये कि क्या आप खुद कॉन्शियस हो रहे हैं। देखिए मैं इसकी आपको मिसाल देता हूं, इससे बात वाजे होनी शुरू होगी कि जब आप मैं अपनी जिंदगी में दिस इज अ रियलिटी, मेरे साथ ये हुआ है, इसलिए इट्स अ वेरी रियल एग्जाम्पल। यानी मैंने इस पे कोशिश शुरू की कि मैंने अपने आप को, अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, रोड रेज को, खासतौर पे रोड रेज को। यानी रोड रेज से मेरी मुराद है कि अगर कोई बदतमीजी कर रहा है ड्राइविंग करते हुए, आगे पीछे गलत तरीके से चला रहा है, तो मेरे जो अल्फाज विदाउट इवन कंसिडरेशन निकल जाया करते थे, मैंने उनको ठीक करना है। अच्छा, इसके लिए मैंने वो एक्सरसाइज की, मैं वो आपके साथ शेयर भी करूंगा इंशाल्लाह आइंदा, आप में से जो भी चाहे उसको कर भी सकता है। वो जब एक्सरसाइज की तो उसके नतीजे में जो चीज पैदा हुई वो समझ लीजिए क्या है, और वो इट टुक सम टाइम, ऐसा नहीं हुआ कि ये दो दिन बाद हुई, दो चार दिन के बाद, ऑलमोस्ट टू वीक्स के अंदर एक चीज तो पैदा हो गई। वो ये कि मैं जब गाड़ी में बैठने लगता था, अपनी गाड़ी की चाबी लगाया करता था, तो मुझे ये रियलाइजेशन हो जाती थी कि तुमने गुस्सा नहीं करना, लेकिन गुस्सा हो जाता था, यानी गुस्सा निकल जाया करता था विदाउट हैविंग फुल चार्ज ओवर इट। और फर्क क्या पड़ा, फर्क ये पड़ा कि पहले ये होता था कि गुस्सा निकल जाया करता था और फिर कोई दो घंटे के बाद ये ख्याल आता था कि यार ये गलत किया, यार ये क्या कर दी, फिर वही हरकत कर दी। ये टाइम कम होना शुरू हो गया, ये टाइम कम होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा, यहां तक कि इमीडिएटली आफ्टर आ गया। इसके बाद क्या हुआ कि ड्यूरिंग द टाइम आना शुरू हो गया, ठीक है जी, यानी गुस्सा चढ़ाए और गुस्सा निकल गया और निकलते हुए ख्याल आना शुरू हो गया, और इसके बाद बिफोर द टाइम आना शुरू हो गया। ये एक प्रोग्रेशन है, यूं समझ लें, ये खुद मैं रिकग्नाइज कर रहा हूं, ये मैं खुद इसको नोट कर रहा हूं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मेरे आसपास के लोग नोट कर रहे हो। मैं खुद इसके अंदर जो मैं ये जो हो रही है ना जी, जो डेवलपमेंट हो रही है, इसको नोट कर सकता हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये हो रहा है। बट फॉर माई सन और फॉर माई वाइफ और फॉर माई डॉटर्स और यू नो फॉर माई फ्रेंड्स, वो असल में वही हो रहा है कि यार अभी भी ये अपनी जुबान पर काबू नहीं है, लेकिन एक प्रोग्रेस चल रही है, एक प्रोग्रेस चल रही है। ये इससे मोटिवेशन हासिल करने की कोशिश करनी है आपने, एक वो चीज जो आपका मोटिव है, असल मोटिव कि वो खुदा के सामने है, आपने अल्लाह ताला के साथ एक ट्रांजैक्शन की हुई है, अल्लाह ताला के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, इस चीज को अपने जहन में आपने ज्यादा से ज्यादा जिंदा रखने की कोशिश करनी है। यानी इसको इसको आप सब लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं, मुझे कई दफा महसूस होता है कि ये जो कुरान मजीद ने मुनीब का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, ये शायद इसी के लिए इस्तेमाल किया, मुनीब का, कि इंसान जो है वो ऐसा दिल जो कि खुदा की हुजूरी में रहता हो। ठीक है जी, तो इस पे गौर कीजिएगा इंशाल्लाह, क्या ये चीज फायदा देती है। I feel I have benefited a lot from this motive, ये जो अपने इस motive को क्लियर करना है, इससे बड़ा फायदा हुआ है जी। लेकिन जी आयशा, आपकी बात का मैं कोई जवाब दे पाया हूँ जी?
जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर,
बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।
सर हमारे पास 2 मिनट हैं और सोबिया का एक सवाल है, आप सर हम जवाब दे दीजिए।
जी जी
जी सोबिया
जी, सर हमने वो पिछली दफा जब assumptions पढ़ी थी critical reflection में, तो उसमें अगर कोई पर्सन आपके साथ अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है और उसकी जिंदगी में वो काफी सीरियस प्रॉब्लम हो, और हम ये कोशिश करें कि उसकी assumptions को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें क्या, और पता चल जाए कि वो assumptions काफी गलत हो, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चों से मतलब गलत हो या फिर मुझे ठीक ना लग रही हो, कुछ भी ऐसा हो, मसलन उसका ये स्ट्रांग बिलीफ हो कि नहीं बच्चे को खूब डांट के और मार पीट के रखना चाहिए या शेर की निगाह से देखना चाहिए, तो अब इसी तरह और भी कोई, या फिर बीवियों के साथ फॉर एग्जांपल कुरान ये कहता है तो इस तरह रखना चाहिए इनको, तो अब ये अजम्पशंस अगर मुझे पता भी चल गए तो फिर इंटरेक्शन आगे बातचीत बढ़ने का कोई फिर क्या तरीका होगा? ठीक है अजम्पशंस जानना है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पता चल गई, अब क्या होगा, अब बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी?
नहीं देखिए एक चीज तो ये है कि एक जब आई एम सॉरी बात मैं सुन नहीं सका जी
कि सर यानी उसका ये बिलीफ है, उसकी उसकी वो अजम्पशन इतनी स्ट्रांग है, वो उसके स्ट्रांग बिलीफ्स हैं और वो ये समझ रहे हैं कि नहीं ये मैं इनको चेंज नहीं करना चाहता क्योंकि ये बात तो ऐसे ही है, तो फिर उस सूरत में तो मुझे फिर क्या होगा आगे, फिर यानी जान भी लिया तो फिर क्या आगे बात गुफ्तगू कैसे बढ़ेगी?
नहीं, जब आपने एक चीज के बारे में ये अपनी कोशिश कर दी कि वो इसके बारे में जो आप उनकी बात में जो अजम्पशंस हैं और जो अजम्पशंस ठीक नहीं हैं आपकी नज़र में उनके बारे में, एक तो ये कि आप बजाय इसके कि ये जजमेंट दें कि अजम्पशन ठीक नहीं है, क्वेश्चंस रेज करें सो दैट अ पर्सन कैन हिमसेल्फ अंडरस्टैंड। देखिए मैं एक चीज इसकी एक आपको मिसाल देता हूँ कि आप यूं समझ लें कि अगर आपकी वो राय होती तो आप जिस जगह पे खड़े होते, व्हाट वुड हैव बीन द क्वेश्चंस जिसके नतीजे में आपकी राय चेंज होती, या वो व्हाट वुड हैव बीन द क्वेश्चंस जिससे वो अजम्पशंस की गलती आप पर वाजे होती, इसकी इमेजिनेशन। आपने ये सब कुछ कर लिया और वो साहब जो हैं या वो खातून जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो इसी पर मुतमइन हूं और मैंने इसी पर जिंदगी गुजारनी है मरते दम तक, उनके लिए दुआ की जा सकती है जी। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकता। यानी एक आदमी की ये राय है कि नहीं आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी आप इंफॉर्मेशन मेरे सामने रख दें कि बच्चों के साथ मामला क्या करना चाहिए, यानी यूं समझ लें कि हम अपने बच्चों की तरबियत वेरी ऑनेस्टली, अगर मैं आपको बताऊं कि जब ये आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि हमने अपने बच्चों के बिहेवियर को ठीक करना है, तो असल में हम जिस प्रिंसिपल पे चल रहे हैं वो वही प्रिंसिपल है जो, अगर क्योंकि मैं इसका भी बड़ा शौकीन रहा हूं जी, मेरे अच्छे कुत्ते रखने का, यू नो गार्ड डॉग्स, आई लव गार्ड डॉग्स एंड खास तौर पे रॉटवाइलर्स मुझे बहुत पसंद है। तो जिस बेसिस पर हम कुत्तों की ट्रेनिंग करते हैं उस बेसिस पर हम इंसान को डील कर रहे होते हैं। ये दिस इज अ ट्रेजेडी, इट्स अ ह्यूज ट्रेजेडी, लेकिन ये हकीकत है। यानी बिहेवियरल जो बिहेवियर को कंट्रोल करने की जो साइकी साइकोलॉजी है वो प्राइमरीली उन्हीं प्रिंसिपल्स पर चलती है जिन प्रिंसिपल्स पर एनिमल ट्रेनिंग चलती है जी। इंसान इस तरह नहीं सोचता जी।
सर फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें।
यानी फॉर एग्जांपल ये बात कि मैं अपने बच्चों को पनिश और रिवॉर्ड के जरिए से उनका बिहेवियर कंट्रोल करूं, ये असल में हमने जानवरों से सीखा है। आपको मैं एक चीज इंटरेस्टिंग बता दूं, ये दिस इज अ साइंटिफिक रियलिटी, इसको अगर आप चाहेंगे तो खुद ट्राई भी कर लीजिएगा। ये जो जितने भी बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट हैं उनके जो एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स होते हैं वो सिर्फ जानवर होते हैं, और जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करके ये इंसानों के बारे में थ्योरीज डेवलप करते हैं। यानी ये बात कि पेवलोव ने जो एसोसिएटेड स्टिमुलस रिस्पॉन्स वगैरह की जो थ्योरी है, ये असल में आपको पता ही है कि ये कुत्तों से रिलेटेड है, ठीक है जी, और इसकी बेसिस पर वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की थ्योरी बनी हुई है। ये जो दूसरा वो जो है क्या नाम है उसका, व्हाट्स हिज नेम, नाम भूल रहे, ये इनकी एक, दिस इज अ कॉमन फीचर ऑफ दीज बिहेवियरिस्ट के इन्होंने जो काम किया हुआ है वो उनके जो लेबोरेटरी के सब्जेक्ट्स होते हैं वो जानवर होते हैं जी। थ्योरीज इंसानों के बारे में बनाते हैं उन्हीं की बेसिस पे।
राइट सर, ठीक है। और सर वो जो आपने इमेजिनेशन वाला पॉइंट दिया है वो काफी मतलब मुझे लगता है उसके लिए तो काफी प्रैक्टिस चाहिए कि कौन सी चीज ने आपको उस जगह पे, अगर मैं हूं तो कौन सी चीज मुझे बदल सकेगी, यानी ऐसे क्वेश्चंस बनाना, और ये चीज डेफिनेटली उसमें भी आप स्टार्ट होंगी।
दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इंशाल्लाह इस पर हम डिटेल में काम भी करेंगे जी। हाउ आवर क्वेश्चंस आर शेपिंग आवर ओन एंड अदर्स लाइव्स, ये हमारा इसके बारे में पूरा एक टॉपिक होता है जी, इंशाल्लाह।
जी सर, थैंक यू सर।
जी हो गया जी।
सर एक सवाल और है, क्या right. तो हम अभी ले लेते हैं या फिर नेक्स्ट सेशन?
नहीं नहीं, कर लें, अगर टाइम है तो ले लें, बिल्कुल कर लें
जी। राफू यूएस,
वॉइस ऑफ माय क्वेश्चन इज कि आपने जैसे कहा कि अल्लाह के साथ करीब ताल्लुकात रखना चाहिए, मेरी जो एक्सपीरियंस हुई है अपनी जिंदगी में, वेरी वेरी रिलीजियस पीपल स्टिल who claim they are very close to God, who claim they know about religion, who claim to have read the Quran, but behave in such a bad manner and insist that their view is right. So, agar aap Allah ke kareeb hain, to phir aapko jo Allah ne aapko bataya hai, to phir aapki understanding Quran ki, religion ki kya hui, if you cannot practice it in your own life. Where are they going wrong, or am I wrong in understanding them?
No, I would just say that change your focus. You know, I would implore you to change your focus. Don't think about others. Ye unka aur khuda ka mamla hai. Think about yourself. हम जो कुछ जानते हैं हम उसको ठीक करते हैं. हमने दूसरों के लिए जवाब नहीं देना, हमने अपने लिए जवाब देना है. हम किधर से अप्रोच करते हैं जी जिंदगी को. दूसरे अगर गलत कर रहे हैं तो वो उनका मामला है, उनकी खैरखाई में अगर आप उनको कुछ समझा सकते हैं जरूर समझाइए, नहीं समझा सकते ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है. लेकिन अपने बारे में ज्यादा सेंसिटिव हो जाएं कि कहीं मैं तो ये नहीं कर रहा. यानी व्हाट आई वुड seriously, sincerely recommend is कि छोड़ दीजिए इस बात को कि दूसरा जो है वो अपने दीन के इल्म पर अमल कर रहा है या नहीं कर रहा. ये उसका और खुदा का मामला है. उसको इसके अमल करने का ना आपको फायदा होगा, ना अमल ना करने का आपको नुकसान होगा. मैं उस चीज के बारे में कि जो मेरे फायदे और नुकसान का बायस बने, उस चीज के बारे में ज्यादा सेंसिटिव होना शुरू हो जाऊं और उस पर फोकस करने लग पड़ूं. दूसरों का मिरर, दूसरों को देख कर ये समझने की कोशिश करूं कि क्या मेरे अंदर तो यही चीज नहीं है जो मुझे दूसरों में बुरी लग रही है, क्या मैं ऐसा तो नहीं कर रहा. और इस चीज के बारे में बिकॉज दैट इज गोइंग टू बेनिफिट मी.
बट बॉय साहब दिस इज वेरी कॉमन विद अ लॉट ऑफ रिलीजियस स्कॉलर्स आल्सो. वन स्कॉलर नॉट एग्रीइंग विद द अदर एंड कमिंग अप विद थिंग्स दैट you just can't understand. It's the same Quran, it's the same people reading it, interpreting it, and yet you get such conflicting views. Forget a person, what about the people who are supposed to have knowledge, who's supposed to teach us?
Every person who is supposed to have knowledge can only think through his own brain. I can only think through my brain, you know, and I work differently from others. You know, I have a different perspective. I look through my eyes. मुझे जो इस वक्त यहाँ पर जो स्क्रीन दिख रही है वो आपको नहीं दिख रही, ठीक है जी. एंड आई कैन ओनली टॉक अबाउट थिंग्स विच आई कैन सी, विच आई कैन ऑब्जर्व, विच आई कैन नोटिस. एंड लाइकवाइज किसी ने कोई अगर राय दी है जो आपकी राय से या दूसरे किसी स्कॉलर की राय से डिफरेंट है, तो आपको जो ठीक लगती है उसको फॉलो कर रहे हैं. और वो भी स्कॉलर जिसकी राय डिफरेंट है और वो भी कि जिससे डिफरेंट है, दोनों ने एक दिन अल्लाह के हुजूर पेश होना है और दोनों ने उसको जवाब देना है. अगर कोई इंटेंशन में कमी थी, किसी की गलती थी, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा. और अगर अच्छी इंटेंशन के साथ उन्होंने अपने दिल को खुला रख के गौर करने की कोशिश की, फिर भी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे खड़े रहे, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला माफ फरमाने वाला है. हम क्यों इस पे फ्रेट करें? हम अपनी जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा, ये जो अभी बात हो रही थी आमना ने भी की और भी यहाँ पे मेरा ख्याल है आयशा ने भी फरमाई, कि हम अपने बारे में ज्यादा सेंसिटिव और ज्यादा हसास होना शुरू हो जाएं कि हमने इम्प्रूव करना है. बिकॉज ये जिंदगी की मोहलत कब खत्म हो जाएगी ये हमें नहीं पता. दूसरा कितना इम्प्रूव कर जाए, कितना अच्छा हो जाए, ना उसका मुझे फायदा होगा ना मुझे उसका नुकसान होगा. आपकी बात ठीक है, इससे मेरी जिंदगी पे फर्क पड़ सकता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, लेकिन क्या करें. पीपल कैन नॉट थिंक थ्रू वन ब्रेन, यू नो. ऐसा नहीं है कि हर आदमी ने अब उसके दिमाग के थ्रू सोचना है, हर ने अपने अपने दिमाग से सोचना है. देर आर डिफरेंसेज एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल. दे आर रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस दैट नोइंग दैट देर आर डिफरेंसेज, they are not willing to communicate with each other even. That's a very sad affair. That's a very sad affair. Lekin they are responsible for their actions. We are not responsible for them.
But then you don't know who to listen to.
You can listen to everybody, or you can listen to whomsoever you feel more confident with. No problem. No problem. Lekin jab aapki jisko bhi sun rahe hain aap, uske bare mein questions paida ho jayen, to dusron ko explore kar lein. आप मत करें, ये जाहिर है कि ये तो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं होगा ना कि आप सबकी राय सुने. ये तो मुश्किल है, इट्स मुश्किल क्या, ये तो मेरे ख्याल में इम्पॉसिबल है. लेकिन इतना कर सकते हैं कि आपकी जो भी राय है, जिसकी भी बेसिस पर है, उसके बारे में अपने जहन को खुला रखिए. अगर कल को उसके बारे में सवाल पैदा हो जाए तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके दिल को खुला पाए कि आपने अपनी राय बदलने में कोई झिझक नहीं थी, कोई शर्म नहीं थी, अपनी गलती को ठीक कर लिया. एंड दिस इज द कोर्स दैट वी ऑल हैव टू अडॉप्ट फॉर इम्प्रूवमेंट. जैसे जैसे गलती वाजे होते जाए उसको इम्प्रूव करते जाए इंशाल्लाह.
जी थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच.
यू मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम. राइट जी, इंशाल्लाह हम जी कोमल इजाजत है जी.
जी सर बहुत शुक्रिया आपका और आप तमाम लोगों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया. इंशाल्लाह सर नेक्स्ट वीक.